नमस्कार भारत, 21 दिसंबर शनिवार, मैं हूं आदर्श राठौर। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में दिल्ली से लेकर यूपी तक हिंसक प्रदर्शन, 5 की मौत। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बोली, लोगों को नोटबंदी की तरह नागरिकता के लिए लाइन में खड़ा करना चाहती है केंद्र सरकार।
जिस तरह से नोटबंदी के लिए लाइन में खड़ा किया था, उसी तरह से अब ये चाह रहे हैं कि इस मुद्दे पे लाइन में पूरा देश खड़ा हो।
जानेंगे किस ओर जा रहा है असम में नागरिकता कानून के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन।
ये जो पेट्रियटिज्म और हमारा जो इशू है, हम जो स्ट्रीट में हम लोग जो आज बोल के आ रहे हैं, उनको पॉलिटिकली कैरी करने के लिए कुछ पॉलिटिकल पार्टी चाहिए।
होगी अखबारों की समीक्षा और विवेचना भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार नवीन नेगी से। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन उग्र होते जा रहे हैं। कल उत्तर प्रदेश में हुए प्रदर्शनों के दौरान 5 लोगों की मौत हो गई। खबरों के मुताबिक कानपुर, संभल, फिरोजाबाद में एक एक प्रदर्शनकारी की मौत हुई, जबकि बिजनौर में 2 लोगों की मौत हुई। कल राजधानी दिल्ली में जामा मस्जिद और पुरानी दिल्ली के इलाके में भी जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। ब्रितानी सांसदों ने ब्रिटेन को 31 जनवरी तक यूरोपीय संघ से निकालने की प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की योजना का समर्थन किया है। सदन में यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के समझौते वाले विधेयक के पक्ष में मतदान हुआ। इस विधेयक के पक्ष में 358 और विरोध में 234 मत पड़े। अब इस विधेयक पर संसद में आगे चर्चा होगी। संसद में मतदान से पहले बोरिस जॉनसन ने कहा था कि यह वक्त देश को नए भरोसे से भरने का है।
This bill and this juncture in our national story, Mr. Speaker, must not be seen.
यह बिल और यह वक्त हमारे देश के लिए बेहद अहम है। इसे किसी एक पार्टी और एक धड़े की जीत के तौर पर नहीं देखना चाहिए। यह मौका है जब हमें पुराने मुद्दों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। ये थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के शब्द। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी ICC की मुख्य अभियोजक फातो बेंसोडा का मानना है कि इसराइल के कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाकों में युद्ध अपराध हुए हैं। फातो बेंसोडा ने कहा है कि वो इन अपराधों की जांच करवाना चाहती हैं। अगर यह जांच होती है तो इसके दायरे में इसराइल और फिलिस्तीन दोनों आएंगे। इसराइल ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि ICC के पास उनके इलाके में जाँच करने के अधिकार नहीं है। हालांकि फातो बेंसोडा ने कहा है कि इस जाँच को रोकने की कोई सही वजह किसी के पास नहीं है।
In brief, I am satisfied, one, that war crimes have been or are being committed.
मैं इस बात पर सहमत हूं कि वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलम और गजा पट्टी के इलाकों में युद्ध अपराध हुए हैं। इन इलाकों से लगातार युद्ध अपराधों की रिपोर्टें मिली हैं। इन मामलों की पूरी जांच करवाई जानी चाहिए और इस जांच को रोके जाने की कोई वाजिब कारण किसी के पास नहीं है। ये थे ICC की मुख्य अभियोजक के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। कैमरून की संसद ने एक कानून पारित कर देश के 2 अंग्रेजी भाषी इलाकों को विशेष दर्जा देने का फैसला किया है। इन दोनों ही इलाकों में बीते 2 साल से अलगाववादी प्रदर्शन चल रहे थे। इस नए कानून के बाद इन इलाकों को अपनी अलग विधानसभा मिल जाएगी। इसके साथ ही यहां की शिक्षा और न्यायिक व्यवस्था भी स्वतंत्र हो जाएगी। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स के 3 इलाकों में आग लगने की चेतावनी जारी की गई है। यहां शनिवार को तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंचने का अनुमान है। सबसे ज्यादा खतरा ग्रेटर सिडनी, एलवारा और दक्षिणी रेंज में बताया गया है। आग लगने की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन अपनी छुट्टियों को बीच में छोड़कर स्वदेश लौट रहे हैं। वो परिवार के साथ हवाई में छुट्टियां बिता रहे थे। ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो ने देश के अभियोजन पक्ष, राजनेताओं और पत्रकारों के लिए काफी बुरे शब्दों का इस्तेमाल किया है। बोल्सोनारो के बड़े बेटे फ्लेवियो के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक मामले की जांच हो रही है। फ्लेवियो ब्राजील के सांसद भी हैं। इसी जांच से गुस्साए राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने कहा है कि तमाम लोग राजनीतिक कारणों से उनके बेटे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। अमेरिका की 2 सैन्य अकेडमियों से जुड़े छात्रों को नस्लवाद के आरोप में बरी कर दिया गया है। वेस्ट पॉइंट की सैन्य अकेडमी और US नेवल अकेडमी के छात्रों के बीच पिछले हफ्ते एक फुटबॉल मैच हुआ था। टीवी पर लाइव प्रसारित हुए इस मैच में छात्रों के हाथों पर सफेद पाउडर लगा था, जिसे वो हवा में लहरा रहे थे। जांच में पता चला है कि असल में यह युवा छात्रों के बीच खेले जाने वाला एक सामान्य खेल है और इसका नस्लवाद से कोई संबंध नहीं है। BBC समाचार।
BBC बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और अपने मोबाइल ऐप पर भी लाइव सुन रहे हैं। मैं हूं आदर्श राठौर। सबसे पहले बात नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों की। कल भी देश के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन हुए। उत्तर प्रदेश में 5 लोगों की जाने गईं, बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में हुए प्रदर्शनों के कारण अब तक कुल 13 लोगों की जान की खबरें आ चुकी हैं। पुलिस की ओर से प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर रहे हैं। उत्तर प्रदेश से कल सबसे ज्यादा हिंसा की खबरें आई। इससे पहले गुरुवार को लखनऊ में हिंसा हुई थी। शुक्रवार को वहां पर हिंसा का दोहराव नहीं हुआ, लेकिन लखनऊ के अलावा लगभग हर जिले से न सिर्फ प्रदर्शनों की बल्कि हिंसक प्रदर्शनों की खबरें आई। इन प्रदर्शनों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत भी करनी पड़ी। 5 लोगों की मौत हो गई कल। हमारे सहयोगी समीर आत्मज मिश्र उत्तर प्रदेश से सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आप कहाँ हैं और वहां पर हालात कैसे हैं?
जी आदर्श, मैं हूँ इस समय कानपुर में। जैसा आपने बताया कि लखनऊ के अलावा बाकी सब तमाम जगहों से हिंसक खबरें मिली। कानपुर में भी यहाँ काफी हिंसा हुई, जिसमें 8 पुलिसकर्मी घायल हो गए, पुलिस के 1-2 ऑफिसर भी घायल हो गए और 13 लोग जो हैं प्रदर्शनकारी वो घायल हुए हैं। एक व्यक्ति की कल मौत की भी खबर है यहाँ पे कानपुर में भी। हालांकि अपुष्ट सूत्रों से 5 पूरे उत्तर प्रदेश में 5 से ज्यादा के मरने की भी खबर आ रही है, लेकिन पुलिस का कहना है कि उसने गोलीबारी नहीं की, केवल रबड़ की गोलियां चलाई और आंसू गैस के गोले छोड़े। प्रदर्शनकारियों की ओर से गोलीबारी हुई है, लेकिन ज्यादातर जगहों में ये प्रदर्शनकारी और पुलिस दोनों की तरफ से गोलीबारी की खबर है। कई सारे लोग घायल हुए हैं। यहाँ कानपुर में हालात काफी देर रात तक कई जगहों से बड़ी अनिश्चितता की खबरें आ रही थी कि हिंसा हो सकती है, नहीं हो सकती है। हैलट हॉस्पिटल जो है यहाँ का, वहाँ हम लोग गए तो वहाँ बड़ी अफरा तफरी मची हुई थी। परिजन जिनके लोग घायल थे वो लोग वहाँ पे मौजूद थे और काफी पुलिस को लेकर के पुलिस जो पूरी कार्यप्रणाली थी उसको, कि पुलिस को ये मालूम था कि ऐसा हो सकता है, वो रोक नहीं पाई।
जी, ये धारा 144 भी लगी है, लेकिन उसके बावजूद ये हिंसा कैसे हो रही है?
बिल्कुल, ये धारा 144 पूरे राज्य में लगी है और डीजीपी और जो प्रमुख सचिव गृह हैं उत्तर प्रदेश के, वो लगातार इस बात का लोगों को याद दिलाते रहे कि पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 है, उसका पालन किया जाए। लेकिन गुरुवार को न तो लखनऊ में उसका पालन हुआ और न ही शुक्रवार को पूरे उत्तर प्रदेश में। जहां जहां भी आपने देखा हिंसा की खबरें, करीब 13-14 जिले ऐसे हैं जहां हिंसक प्रदर्शन, बहुत ज्यादा हिंसक प्रदर्शन हुआ है। अलग अलग जगहों पे 5-6 लोगों के मरने की खबर भी है। कई जगह पे ये इंटरनेट सेवाएं जो गुरुवार को भी बाधित रही, शुक्रवार को भी, आज भी बाधित हैं। बावजूद इसके ये सारी चीजें कि इंटेलिजेंस इनपुट कैसा रहा पुलिस के पास, उसकी तैयारी कैसी रही, इसको लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं कि सारी चीजों की जानकारी होने के बावजूद वो तैयारी नहीं थी उसकी और वो रोक नहीं पाई इस हिंसा को।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया समीर आत्मज मिश्र, जानकारी दे रहे थे कानपुर से कि वहां पर किस तरह के हालात हैं और प्रदेश में किस तरह से निषेधाज्ञा लागू होने के बावजूद लोग प्रदर्शन करने उतर रहे हैं। लखनऊ के अलावा कल भारत की राजधानी दिल्ली में भी कुछ प्रदर्शनकारी हिंसक हो गए। जामिया नगर और सीलमपुर के बाद कल पुरानी दिल्ली इलाके में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। बीबीसी संवाददाता दिलनवाज पाशा वहां मौजूद थे, सुनिए उन्होंने क्या देखा।
दिल्ली गेट, जामा मस्जिद और आसपास के इलाकों में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। ये प्रदर्शन शाम मगरिब की नमाज के वक्त तक शांतिपूर्ण रहा। उस दौरान मैं यहाँ मौजूद था और पुलिस और मुस्लिम समुदाय के ही कुछ लोग प्रदर्शनकारियों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील कर रहे थे। हमने कुछ प्रदर्शनकारियों से भी बात की जिन्होंने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर अपने गुस्से का इजहार किया।
हम किसी के अगेंस्ट नहीं है, अपने कान हक के लिए हैं। हमें इस देश से मोहब्बत है, हम इस देश के नागरिक हैं, हमारा खून भी शामिल है यहाँ की मिट्टी में। हम पराए नहीं है, यहाँ के हम हैं, यहीं बड़े हैं, यहीं पैदा हुए हैं, यहीं मरेंगे, यहीं जिएंगे।
पाकिस्तान से जो लोग आ रहे हैं उन लोगों के डॉक्यूमेंट्स बना के उनको यहाँ पे स्टे कराएंगे और जो यहाँ के ऑलरेडी निवासी हैं उनके पास बेचारों के पास डॉक्यूमेंट्स की कमी अगर किसी के पास होगी उसको वहाँ पे धक्के खाने पड़ेंगे पहले बात तो अधिकारियों के पास, और कितना करप्शन बढ़ेगा इससे ये देखिए।
शाम होते होते लोग अपने घर लौटने लगे थे, लेकिन यहाँ पर दरियागंज थाने के पास प्रदर्शनकारियों का एक समूह उग्र हो गया। उसने पुलिस पर पत्थरबाजी की, जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन चलाया, गाड़ी जला दी गई, इसके पीछे एक और वाहन है जिसे तोड़ दिया गया। पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, 32 लोगों को हिरासत में लिया गया है जिन्हें दरियागंज थाने लाया गया है।
6:30 बजे ये कुछ हमारे जो है लोग जो इकट्ठे हुए थे, इनमें से कुछ आउटसाइडर्स भी आए, इन्होंने स्टोन पेल्टिंग वगैरह शुरू की और हमने वाटर कैनन यूज़ किया, टीयर गैस वगैरह कुछ यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ी और बाद में हम उनको पीछे पुश कर दिया और इसमें हमारे कुछ पुलिस पर्सनल को इंजरी आई है और इनके भी काफ़ी लोग हमने डिटेन किया।
हमें बताया गया है कि पुलिस लाठीचार्ज में कुछ लोग घायल भी हुए हैं, हमने यहाँ सड़क पर खून के धब्बे भी पड़े हुए देखे हैं।
पुलिस का कहना है कि दिल्ली गेट इलाके में भीड़ और पुलिस के बीच जो हिंसक झड़प हुई थी उसमें बाहर के लोग शामिल थे। दिल्ली के इंडिया गेट में कल प्रदर्शनकारी जुटे, कांग्रेस महासचिव भी उनके समर्थन में वहां पहुंची और कहा कि नागरिकता, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की हम बात कर रहे हैं, वो पहुंची और उन्होंने कहा कि नागरिकता कानून और NRC गरीबों के खिलाफ है। सुनिए क्या कहा उन्होंने।
देश भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये जो कानून है CAA और NRC का, ये बेसिकली गरीबों के खिलाफ है क्योंकि सबसे अफेक्टेड गरीब तक का होगा। आप बताइए अगर किसी को पुराने दस्तावेज निकालने पड़ेंगे दिखाने के लिए कि उनकी जमीन है, कि वो पैदा कब हुए, कहाँ हुए, अगर आपकी दादी को दिखाने हो तो दिखा पाएंगी? तो किस स्थिति में डाल रहे हैं देश को? जिस तरह से नोटबंदी के लिए लाइन में खड़ा किया था उसी तरह से अब ये चाह रहे हैं कि इस मुद्दे पे लाइन में पूरा देश खड़ा हो। कौन अफेक्ट होगा इससे? जो अमीर है वो तो पासपोर्ट दिखा देगा।
प्रियंका गांधी का कहना है कि नागरिकता साबित करनी पड़ी तो सबसे ज्यादा नुकसान गरीबों का होगा। वैसे नागरिकता कानून के बाद जिस सवाल को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है कि जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है उन्हें नागरिकता साबित करनी पड़ी तो उसके लिए क्या करना होगा। इसी बात को लेकर कल केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रवक्ता के ट्विटर हैंडल से कुछ जानकारियां दी गई। क्या बातें कही गई बताने के लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी नवीन नेगी। नवीन
जी आदर्श, कल गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्वीट करके कहा कि भारत की नागरिकता जन्म की तारीख या जन्म स्थान या इन दोनों से संबंधित किसी भी दस्तावेज को देकर साबित की जा सकती है। इस सूची में बहुत से आम दस्तावेजों को शामिल किए जाने की संभावना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी भारतीय नागरिक अनुचित रूप से प्रताड़ित ना हो और ना ही किसी प्रकार की असुविधा में पड़े। प्रवक्ता ने कहा कि जो लोग 1971 से पहले से भारतीय नागरिक हैं उन्हें अपने माता पिता या उनके माता पिता के पहचान पत्र या जन्म प्रमाण पत्र आदि जैसे दस्तावेज पेश कर किसी भी तरह की वंशावली को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि निरक्षर नागरिकों को जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं है उन्हें अधिकारी बतौर गवाही समुदाय के सदस्यों द्वारा समर्थित स्थानीय सबूतों को पेश करने की अनुमति दे सकते हैं और ऐसे मामलों में समुचित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।
शुक्रिया नवीन। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ असम में भी आंदोलन चल रहा है, बल्कि सबसे पहले आंदोलन यहीं से शुरू हुए थे। लेकिन ये आंदोलन पहुंचे गए कहाँ? क्या यहाँ के लोग नए राजनीतिक विकल्प की तलाश में हैं? क्या उत्तर पूर्व का ये राज्य फिर से उसी मुहाने पर खड़ा है जहाँ से कभी असम गण परिषद का गठन हुआ था और फिर उसने सरकार भी बनाई थी? ये सवाल इसलिए चर्चा में है क्योंकि सेलिब्रिटी गायक जुबीन गर्ग ने एक पार्टी बनाने का प्रस्ताव रखा है और उस पर बाकी जो वहां के छात्र संगठन हैं उनका भी समर्थन मिल रहा है। सुनिए हमारे सहयोगी रवि प्रकाश की रिपोर्ट।
कभी पॉलिटिक्स को खराब मानने वाले असम के सेलिब्रिटी गायक जुबिन गर्ग ने गुवाहाटी के चांदमारी ग्राउंड में कैब विरोधी प्रदर्शन के दौरान मन से कहा कि हम एक राजनीतिक पार्टी बनानी है। उन्होंने कहा कि मिनिस्ट्रीम की पार्टियों से असम के लोगों का भला नहीं होने वाला, हम अपनी पार्टी बनाएंगे, इसमें असमिया स्वाभिमान और हमारी जरूरतों की बातें होंगी। जुबीन के इतना कहते ही पूरा मैदान तालियों से गूंजने लगा। वहां मौजूद आसू के पदाधिकारियों ने भी जुबीन की बातों से सार्वजनिक तौर पर सहमति जताई। तो क्या आसू सच में सीरियस है? क्या नागरिकता कानून में ताजा संशोधनों के खिलाफ असम में चल रहे आंदोलन के गर्भ से नई सियासी पार्टी का जन्म हो सकता है? मैंने आसू के महासचिव लोरिन ज्योति गोगोई से यही सवाल पूछा। तब उन्होंने BBC से कहा,
सबको एक अल्टरनेट पॉलिटिकल एक फोरम चाहिए कि सबने अभी तक सबने बिट्रेड किया है ये देखिए, पहले तो एजीपी बना आसू से ही, वो भी बिट्रेट कर लिया। उसका बाद लास्ट इलेक्शन में बीजेपी ने जो उन्होंने हम लोगों को जो ये दिया था, वादा दिया था, उनको भी उन्होंने नहीं निभाया, यू टर्न ले लिया, सबका बिट्रेड है। और कांग्रेस को तो वो कम्युनल भूत बैंक एजेंडा उनका पुराना दिन से चल के आ रहा है। अभी ये भी बीजेपी भी एक कम्युनल भूत बैंक चलाने के लिए उन्हें उन लोग तैयार है, इसके लिए ही ये काल आ रहा है। इसलिए सब आम जनता का जो विचार है हमको, क्योंकि बैलट ही एक प्रोटेस्ट का एक मीडियम है, ये जनता का जो गुस्सा है और हमारा जो विचार है, जो हमारा जो फिलोसफी है, जो हमारा ये जो पेट्रियटिज्म और हमारा जो इशू है, हम जो स्ट्रीट में हम लोग जो आज आज बोल के आ रहे हैं, उनको पॉलिटिकली कैरी करने के लिए कुछ चाहिए, कुछ पॉलिटिकल पार्टी चाहिए।
लेकिन गुवाहाटी यूनिवर्सिटी की स्कॉलर प्रतिष्ठा पाराशर का मानना है कि नए राजनीतिक दल के गठन के लिए यह सही वक्त नहीं है।
अभी फिलहाल ये हो रहा है कि हम लोग का यहाँ में जो सब पार्टीज है, पॉलिटिकल पार्टीज, उन लोग के ऊपर लोगों का विश्वास नहीं रहा। मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये प्लेटफॉर्म के लिए, ये प्लेटफॉर्म जो क्रिएट हो रहा है ना, कोई कोई बोल रहा है कि इसी में हम लोग को खुद का एक ग्रुप ऐसा क्रिएट करना चाहिए जिसमें हम लोग बिलीव कर पाए, खुद का ग्रुप।
गुवाहाटी यूनिवर्सिटी की ही सुरती सोतिया कहते हैं,
नया पॉलिटिकल पार्टी तो सही है, अभी जो भी पार्टी है उन लोगों के ऊपर जो विश्वास है वो तो अभी नहीं रहा।
गुवाहाटी के हिंदी अखबार दैनिक पूर्वोदय के संपादक रविशंकर रवि मानते हैं कि लोगों ने अब राजनीतिक विकल्प पर सोचना शुरू कर दिया है।
ये नागरिकता संशोधन कानून आने के बाद एक गुस्सा तो है लोगों में, और लोग अब ये सोच रहे हैं कि अगर हम बीजेपी को वोट नहीं दें, एजीपी को नहीं दें, तो हम किसको दें, और क्या उसके लिए कोई राजनीतिक दल विकल्प के रूप में आ सकता है।
असम में चल रहे आंदोलन के बाद क्या होगा यह भविष्य की बात है, लेकिन इतना तो तय है कि यह आंदोलन सियासत की नई कहानी लिखने वाला है। रवि प्रकाश, बीबीसी के लिए गुवाहाटी में।
और अब अखबारों की समीक्षा। नवीन, क्या कहते हैं दिल्ली से छपने वाले अखबार?
जी आदर्श, दिल्ली से छपने वाले अखबारों में एक बार फिर नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसकी खबरें, तस्वीरें तमाम छाई हुई हैं। दैनिक भास्कर मेरे सामने रखा है, जिसने अपनी हेडलाइन में महात्मा गांधी का एक बयान जो है उन्होंने लिखा है कि सत्य और अहिंसा के अस्त्र से संचार को झुकाया जा सकता है, हिंसा भारत छोड़ो, यानी कि जो हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं उन्हें ना करने की अपील यह अखबार करता है। नीचे एक तस्वीर लगी है जिसमें दिखाया गया है कि कुछ दो तीन पुलिस वाले हैं जो एक प्रदर्शनकारी को पकड़कर उस पर लाठियां बरसा रही हैं, कानपुर की तस्वीर बताई गई है। जनसत्ता मेरे सामने है और उसमें एक और तस्वीर है जिसमें सिर्फ चप्पल ही चप्पलें बिखरी पड़ी हैं। ये पुरानी दिल्ली का इलाका है जहाँ की यह तस्वीर है, सिर्फ चप्पलें हैं, यहाँ से प्रदर्शनकारी शायद पुलिस भगा दिए हैं
जी।
और इसके साथ ही एक और खबर जो द टेलीग्राफ में छपी है, इसमें बताया गया है कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से 6 लोगों को ट्रेन पर पत्थर फेंकते हुए देखा गया था और इनमें से 2 लोगों को पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। अखबार लिखता है कि इन 6 लोगों ने टोपी पहनी थी, जो कि मुस्लिम समुदाय के जो लोग पहनते हैं उस तरह की टोपी, और लुंगी पहनी हुई थी, और इन सभी लोगों का संबंध जो है संघ परिवार से बताया गया है। इन 6 में से 5 लोगों को जो है 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है, बाकी के जो 4 लड़के हैं वो नाबालिग हैं, इसलिए उन्हें जो है अभी 14 दिन की जेल दी गई है, लेकिन उसके बाद उनको छोड़ दिया जाएगा
जी।
इसके अलावा जो है केंद्र सरकार जो है नागरिकता कानून पर विरोध को देखते हुए संशोधित नागरिकता कानून पर लोगों के सुझाव सुनने के लिए तैयार हो गई है, ये खबर हिंदुस्तान अखबार में छपी है। और सरकार के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा है कि जरूरी होने पर इन सुझावों को कानून के तहत बनाए जा रहे नियमों में शामिल किया जा सकता है
जी। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन।
बीबीसी इंडिया बोल।
नागरिकता कानून के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन, क्यों सरकार के तमाम आश्वासनों के बावजूद बढ़ रहा है विरोध? क्या मोदी सरकार ने इस मामले में जल्दबाजी दिखाई है या उसे अंदाजा ही नहीं था कि विरोध की आग इतनी भड़क जाएगी? यही है इस बार बीबीसी इंडिया बोल का विषय। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शनिवार 21 दिसंबर शाम 7:30 से 8 बजे के बीच मुफ्त फोन करें इन नंबरों पर 1811-7000 और 1811-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
पिछले दिनों 1971 के बांग्लादेश युद्ध की 48वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस लड़ाई की जब भी बात होती है तो फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ और जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा का नाम लिया जाता है। इस बात की बहुत कम चर्चा होती है कि इस लड़ाई में जनरल सगत सिंह ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये उनके नेतृत्व का ही परिणाम था कि भारतीय सेना 13 दिनों के अंदर ढाका पहुंच गई थी। आज विवेचना में रेहान फजल याद कर रहे हैं जनरल सगत सिंह के सैनिक जीवन को।
16 दिसंबर 1971 समय यही कोई शाम के 5:30 बजे पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण के बाद जनरल सगत सिंह पूर्वी कमान के प्रमुख जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा को ढाका हवाई अड्डे छोड़ने गए। जल्दी जल्दी जनरल जैकब से उन्होंने मंत्रणा की। जनरल अरोड़ा ने उन्हें नियाजी के दस्तखत की हुई आत्मसमर्पण के दस्तावेज की प्रतिलिपि देकर कहा कि वो इसे नियाजी तक पहुंचा दें। जैसे ही जनरल अरोड़ा का हेलीकॉप्टर ढलते हुए सूरज की कम होती हुई रोशनी में गुम हुआ, जनरल सगत सिंह ने अचानक ढाका हवाई अड्डे पर अपने आप को बिल्कुल अकेले खड़ा पाया। उनके साथ सिर्फ उनके स्टाफ ऑफिसर्स और कुछ वायरलेस ऑपरेटर्स थे। 16 दिसंबर का दिन जनरल सगत सिंह के लिए बहुत उथल पुथल वाला था। उनके एडीसी रहे और बाद में लेफ्टिनेंट जनरल बने जनरल रणधीर सिंह याद करते हैं।
हम सवेरे सवेरे उठे और डॉन होते हेलीकॉप्टर लिया, जनरल साहब ने मेघना को क्रॉस करा और नरसिंह जी गाँव है वहाँ उतरे, वहाँ से हमने गाड़ी ली और जनरल साहब एकदम आगे गए जहाँ पर फोर गार्ड्स का ऑपरेशन चल रहा था देखने के लिए। वहाँ उनको खबर मिली कि एकदम वापस आओ, आपको अगरतला बुलाया है। जैसे ही वो कोमिला पहुंचे जहाँ हमारा हेडक्वार्टर्स था, वहाँ उनके स्टाफ ने बताया कि ढाका में वो सरेंडर होने वाला है और आपको बुलाया गया है वहाँ पे।
जब जनरल सगत सिंह के हेलीकॉप्टर ने ढाका में लैंड किया उस समय पूरा ढाका शहर सड़कों पर उतर आया था।
हमारे सैनिक खड़े थे रोड पे, उनको मालूम नहीं करें क्या, कैसे कंट्रोल कर। लड़कियां आकर उनको हग कर रही हैं, उनके हथियारों के अंदर फूल डाल रही हैं। समाज सिपाहियों ने एक एरिया क्लियर कर रखा था, एक टेबल और दो कुर्सी लगा दी थी और सूरजीत सेन जो थे ऑल इंडिया रेडियो के जो रिपोर्टर, वो उन्होंने सबसे बेस्ट जगह ले ली, वो टेबल के नीचे बैठ गया के माइक्रोफोन ले। फिर जनरल अरोड़ा और जनरल नियाजी आकर बैठे। फिर जनरल अरोड़ा ने वो सरेंडर डॉक्यूमेंट निकाला और उनको बोला आप साइन करें। उनके पास पेन नहीं थी नियाजी साहब के पास, तो फिर सूरजीत सेन ने अपनी पेन दी उनको, फिर उन्होंने साइन करा। 5 कॉपीज साइन की गई। फिर जनरल अरोड़ा ने बोला आप अपना हथियार दें। फिर जनरल नियाजी साहब ने अपना हथियार निकाला, वो पकड़ाया और फिर अरोड़ा साहब ने तो बोला मैं तो जा रहा हूँ वापस। इतने में क्या हुआ कि नियाजी के मारने के लिए लोग इतने वो थे क्योंकि पत्थर वत्थर आने लगे, तो हम लोग जितने भी यंगस्टर्स थे और
जनरल सगत सिंह की 50 पैरा को एक सपोर्टिव रोल के लिए चुना गया था, लेकिन उन्होंने उन्हें दी गई जिम्मेदारी से कहीं बढ़कर काम किया और गोवा को इतनी तेजी से आजाद कराया कि सभी दंग रह गए। इसके बाद जनरल सगत सिंह को 17 माउंटेन डिवीजन का GOC बनाया गया। इसी पोस्टिंग के दौरान नाथुला में चीनी सैनिकों की भारतीय सैनिकों से जबरदस्त भिड़ंत हुई और 1962 के बाद पहली बार जनरल सगत सिंह ने दिखाया कि चीनियों के साथ न सिर्फ बराबरी की टक्कर ली जा सकती है बल्कि उन पर भारी भी पड़ा जा सकता है। जनरल सगत सिंह की जीवनी लिखने वाले मेजर जनरल VK सिंह बताते हैं।
इत्तेफाक से मैं उस समय वहीं पोस्टेड था सिक्किम में ही, 67 में जनरल अरोड़ा थे कोर कमांडर थे, उनसे बात की कि भाई हमारा बॉर्डर की मार्किंग होनी चाहिए। सगत ने बोला ऐसा है मैं क्रेस्ट लाइन जो है मैं उस पर चलता हूँ, चाइनीज ऑब्जेक्ट नहीं करते तो हम ये मान लें कि यही बॉर्डर है और वहीं पर फेंसिंग बना देंगे एक। तो उन्होंने वही किया। जब फेंसिंग स्टार्ट करी तब चाइनीज ने ऑब्जेक्शन किया कि भाई आप कैसे बना सकते हैं, इसे भाई ये तो हम बॉर्डर ही बना रहे हैं, आपके उसमें तो नहीं आ रहे हैं। और ये फेंसिंग का काम चल रहा था, चाइनीज के ट्रुप्स आ गए, कॉन्फ्रेंट्रेशन हो गए, टूतू मैं होने लगी और जो ग्रेनेडियर्स की बटालियन थी वहाँ पे सेकंड ग्रेड उसके CO थे कर्नल राय सिंह, वो बंकर में। सगत ने बोला था भाई तुम लोग बाहर मत आना, जो बॉर्डर ट्रुप्स हैं उन्हीं को डील करने दो। बट वो अपना जोश में बाहर आ गए, चाइनीज कमांडर के साथ बात कर रहे थे, इतने में चाइनीज ने फायर खोल दिया, इनको गोली लग गई, ये गिर गए। गुस्से में उन्होंने अपने ट्रेंचेस से निकल के अटैक कर दिया, बहुत लोग मारे गए, गोलीबारी होती रही। तो जनरल सगत ने फिर क्या किया कि ऐसा नहीं चलेगा, मीडियम आर्टिलरी रिक्विजिशन की, नीचे से आई ऊपर, उससे फिर उन्होंने फायरिंग शुरू की। मीडियम गन्स की फायरिंग थी, उससे चाइनीज कैजुअल्टी बहुत हुई, लोग बहुत नाखुश हुए सुपीरियर्स जो थे कि भाई आपने ये खाम खां की लड़ाई कर दी और कोई हमारी 200 कैजुअल्टीज हो गई हैं, करीब 65 लोग तो मारे गए जान गए, 145 के कभी इंजर्ड थे, चाइना की करीब 300 कैजुअल्टीज हुई थी। बट एक खास बात नोट करने की है कि 62 वॉर के बाद पूरी इंडियन आर्मी में जो एक तरह से चाइनीज की दहशत हो गई थी कि ये चाइनीज तो सुपरमैन है, हम इनके मुकाबले कुछ नहीं कर सकते, वो जो थी वो टूट गई। हिंदुस्तान का जवान था, उसको पता लग गया कि हम भी चाइनीज को मार सकते हैं और मारा। तभी तो कहते हैं ये पहली बार था कि वी गेव द चाइनीज अ ब्लडी नोज।
जनरल सगत सिंह के मिलिट्री करियर का स्वर्णिम क्षण तब आया जब उन्हें नवंबर 1970 में 4 कोर की कमान दी गई। इस कमान ने 1971 के बांग्लादेश युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाई। युद्ध के दौरान जनरल सगत सिंह को फ्लाइंग जनरल का निकनेम दिया गया। वो सुबह होते ही हेलीकॉप्टर पर सवार होकर निकल पड़ते और ऊपर से ही मुआयना करते कि लड़ाई किस तरह लड़ी जा रही है। उनके एडीसी रहे लेफ्टिनेंट जनरल रणधीर सिंह याद करते हैं।
जनरल साहब करीब 6 बजे उठ के हेलीकॉप्टर में जाते थे। अगरतला हैंडीक्राफ्ट एम्पोरियम जैसा उन्होंने एक बास्केट दे रखी थी उनको, पिकनिक बास्केट। उस पिकनिक बास्केट के अंदर मैं कोल्ड कॉफी और सैंडविचेस डलवा के वो हेलीकॉप्टर में रखते रहा, क्योंकि वो हेलीकॉप्टर पायलट्स के लिए भी हमको खाना ले जाना पड़ता। फिर वो हेलीकॉप्टर लेके हम करीब 6:30-7 बजे जैसे ही धूप निकलती थी हम निकल पड़ते। फिर पूरा दिन जनरल साहब पूरी बैटल फील्ड पे घूमते थे, मतलब उत्तर तरफ सिलट की तरफ जाना, फिर अगरतला की तरफ आना, फिर दक्षिण चित्तगांव के एरिया तक जाना। कई टाइम पर क्या होता था कि वो जहाँ लड़ाई हो रही थी वहीं लैंड करते, और शाम जब अंधेरा होने लगता था तब हेलीकॉप्टर वापस लैंड करता था। जन साहब 1 घंटा लेते थे अपने आप को तैयार करने के लिए, फिर ऑपरेशन रूम में जाते थे। ऑपरेशन रूम में पूरी उन्होंने डिसाइड करते थे कि उस दिन का क्या क्या हुआ है, क्या हो सकता है। फिर 9 बजे ऑल इंडिया रेडियो को सुनने के लिए, उस टाइम ऑल इंडिया रेडियो का जो इन्फॉर्मेशन आता बिल्कुल ही करेक्ट आता था, तो वो सुनने के लिए हम ऑफिसर्स मेस में आते थे, रेडियो को ऑन करते थे, कभी GBC कभी ऑल इंडिया रेडियो को सुनना। उसी टाइम जनरल साहब करीब 10 बजे करीब हुक्म पास करते थे मेरे को कि कल का प्रोग्राम ये है, आप सबको इन्फॉर्म करो। जनरल साहब डिनर खा के करीब 12 बजे हट में जाकर सो जाते थे।
इसी तरह के एक हेलीकॉप्टर मुआयने के दौरान जनरल सगत के हेलीकॉप्टर पर पाकिस्तानी सैनिकों ने गोलियां चलाई। हेलीकॉप्टर चला रहा पायलट बुरी तरह से घायल हो गया और जनरल सगत सिंह बाल बाल बचे।
जनरल साहब देखना चाह रहे थे कि कहां कहां लैंडिंग होनी चाहिए। नदी के साथ साथ हम जा रहे थे देखने के लिए दुश्मन कोई दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। जब ये हरकत कर रहे थे तो वहां एक पुल है, एक ही पुल है एक्चुअली मेघना के अक्रॉस, उसको बोलते हैं आशुगंज ब्रिज। उस ब्रिज के दुश्मन की साइड की तरफ ग्रेन के साइलोस थे, बड़े बड़े साइलोस। वो साइलो एक्सप्लोड कर गया तो जनरल साहब ने एकदम नोटिस करा, तो उन्होंने बोला कुछ गड़बड़ी। उन्होंने हेलीकॉप्टर वाले को बोला चलो देखने चलो। जैसे ही हम ब्रिज के ऊपर पहुंचने लगे वो साइलो के पास, तो उनके एक मीडियम मशीन गन थी उसने फायर किया, जिससे कि पायलट घायल हो गया। मेरे जैसे लोग जो पीछे बैठे थे वो पूरा खून और उसके पूरे मांस वास हमको आकर गिरी। जनरल साहब के फोरहेड के ऊपर एक ग्रेज हुआ, पर उनका जो को पायलट था उसने कंट्रोल ले लिया और हेलीकॉप्टर को गाइड करके हम अगरतला पहुंच गए। जब सबको इवैक्यूएट का गिना तो 64 बुलेट होल्स थे हेलीकॉप्टर। जनरल साहब ने बॉदर नहीं करा, एक और हेलीकॉप्टर लिया और फिर निकल पड़े।
जनरल सगत सिंह को सबसे अधिक वाहवाही तब मिली जब उन्होंने 4 किलोमीटर चौड़ी मेघना नदी को हेलीकॉप्टरों की मदद से एयर ब्रिज बनाकर पार किया। मेघना नदी पार करने की खबर जैसे ही दिल्ली पहुंची साउथ ब्लॉक में, इंदिरा गांधी इसे सुनकर खुशी से उछल पड़ी। इतना सब कुछ करने के बाद भी जनरल सगत सिंह को कोई वीरता पुरस्कार नहीं दिया गया। उन्हें सिर्फ भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म भूषण ही मिला, और तो और उनका प्रमोशन भी नहीं हुआ। जनरल सगत सिंह को भारत का सबसे निर्भीक जनरल माना जाता है। उन्होंने न सिर्फ कई ऑपरेशनों में जीत हासिल की बल्कि उस सबसे कहीं ज्यादा काम किया जितना उनसे करने के लिए कहा गया था। भारतीय सेना में उनको वही स्थान हासिल है जो अमरीकी सेना में जनरल पैटन और जर्मन सेना में रोमेल को हासिल था। रेहान फजल, BBC दिल्ली।
विदा लेने से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर नवीन नेगी से।
BBC समाचार नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन उग्र। कल उत्तर प्रदेश में हुए प्रदर्शनों के दौरान 5 लोगों की मौत हो गई। ब्रिटानी सांसदों ने ब्रिटेन को 31 जनवरी तक यूरोपीय संघ से निकालने की प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की योजना का समर्थन किया। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी ICC के मुख्य अभियोजक फातो बेंसोडा का मानना है कि इसराइल के कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाकों में युद्ध अपराध हुए हैं। BBC समाचार।
नमस्कार, भारत में इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला कपिल देव सिंह ने। शाम 7:30 बजे BBC इंडिया बोल के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक जुड़े रहिए bbchindi.com के साथ। आदर्श राठौर को सभी सहयोगियों के साथ इजाजत दें। नमस्कार।